ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम चर्चा कर रहे थे त्याग, बेहद का त्याग। क्योंकि ये संसार से चलना है तो त्यागना तो पड़ेगा, परंतु सबसे बड़े से बड़ा त्याग तो इस देह का त्याग। देह प्रति सबका इतना मोह है, देह को छोड़ना कोई नहीं चाहता है। बाबा कहते हैं देह भान का त्याग, देह अभिमान का त्याग, देह का जो संसार है कर्मेंद्रियां, ये देह की बहुत बड़ी दुनिया है। बाहर दुनिया तो है ही, परंतु ये देह की दुनिया में कर्मेंद्रियां ये बहुत बड़ा जाल है। इससे भी मुक्त होना है। और सबसे बड़ा पेपर तो अंत में आएगा कर्मभोग के रूप में। शारीरिक बीमारियां वो भी उथल खाएगी, तो उस समय भी स्थिति एक रस रहे, एक पिता परमात्मा के सिवाय और कहीं बुद्धि न जाए, ये बहुत लंबे समय का अभ्यास ही हो सकता है, तपस्या से ही हो सकता है। शरीर को संभालना, इसके साथ चलना, इसके साथ तपस्या भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी है और भूलना भी है। ये बहुत एक बड़ा बैलेंस है। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा शरीर एक बड़ा राज्य है, तुम आत्मा राजा हो, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार ये महामंत्री है और तुम्हारे ईश्वरीय शक्तियाँ ये मंत्रिमंडल है। ये सब तुम्हारे ऑर्डर प्रमाण में भी चलना चाहिए। इस शरीर को अगर आपको संभालना नहीं आता है, तुम भविष्य में राज्य क्या संभालोगे? तो शरीर को, तन मन धन जन, ये चारों को अच्छी तरह से संभाल कर इसको सफल करना है, तो ये चारों को चलाना अच्छी तरह से आना चाहिए। जो ये चारों को नहीं चलाना आता है तो फिर भविष्य में भी कैसे चलाना आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसका संपूर्ण नॉलेज चाहिए। खाली आत्मा कहने से नहीं चलेगा, इस शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, तुमको कैसे ये शरीर को संभालना है। बाबा स्वयं, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। ब्रह्मा बाबा 6 फुट कद के थे, परंतु बाबा कितना सुंदर एक बैलेंस लाइफ था बाबा का, जो 93 उम्र तक बाबा कोई डंडा नहीं पकड़ना पड़ा, बाबा को कोई चश्मा नहीं पहनना पड़ा। बाबा 4-4 घंटा पूरा एक लगन में बैठ जाते थे राजा की तरह। बाबा ना मोटे थे ना पतले थे, बाबा इस शरीर का संभाल भी किए। देहभान को और देह अभिमान को ऐसे त्याग दिए थे कि अंत में आत्मा पंछी 1 सेकेंड में उड़ गई, एकदम देह को ऐसे छोड़ दिए जैसे कि मक्खन से बाल निकाला जाता है सबके सन्मुख। तो ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना पड़ेगा। तो बाबा को क्या फॉलो करें? बाबा देखिए, हमारे ये शरीर को संभालने के लिए ऐसे भी जो डॉक्टर्स हैं, सभी जानते हैं, साइंटिस्ट हम सभी को कहते हैं कि अच्छा भोजन होना चाहिए, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, साथ साथ ये शरीर को एक्सरसाइज कराना भी ज़रूरी है और गुड रेस्ट चाहिए। तो शरीर को, तन को ठीक करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, ये बाबा की अमानत है। तो वर्तमान समय आप देख रहे हो दुनिया में कैसे महामारी फैल गई है चारों तरफ, लोग एकदम बहुत भयभीत हैं। और इस माहौल में हम बाबा के बच्चे, हमें क्या करना है, हमें ये भी हमें समझ होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल बात है, दुनिया में भूताणु कीटाणु जीवाणु वायरसेस बैक्टीरियस की कोई कमी नहीं, एटमॉस्फेयर में सब घूम रहे हैं, हर कोई को बीमारी नहीं होती है। आप देखे होंगे किसी के शरीर में चोट लग गया तो ऑटोमेटिक हील हो जाता है, और कईयों को तो जरा भी कहीं खरोच आया कि कुछ हुआ तो तुरंत एकदम इन्फेक्शन होकर फैल जाता है। क्यों ऐसा होता है? हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति है, हमारे खून में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं ये सारे जैसे कि एक सेना है, कहीं भी कुछ होता है तुरंत एकदम लाखों संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, उधर कोई जर्म्स की बैक्टीरिया को पूरा एनगल्फ कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी को झेलने के लिए अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति सभी की है, जिसको हम बॉडी इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली, जिस प्रकार लोग, जिस प्रकार का खान पान, जिस प्रकार का बिल्कुल एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दुनिया भर की चिंता, रात भर जागते रहते हैं, तो जो मनुष्य जीवन जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, ना होने के कारण सबकी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम कम हो गई है, जिसके कारण कोई भी बीमारी फट से पकड़ लेती है। अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं तो पहले हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, तो हमें ये वायरसेस, ये जर्म्स कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, हमें कोई नया मार्ग नहीं है, बाबा हम सभी को सिखा के गए हैं। आज जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये बाबा ने हमको 84 साल पहले बाबा ने कहा था। देखिए, बहुत लोग बहुत प्रकार के खान पान के बारे में उनकी बहुत गलत फहमियाँ है, कोई बहुत उपवास भी करते हैं, कई लोग तो सवेरे 12 बजे तक तो कुछ खाते नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। ये वास्तव में ठीक नहीं है। भगवान त्रिकालदर्शी है, भगवान को पता नहीं है कि हमें कैसे स्वस्थ रहें। आज देखिए यज्ञ इतिहास में, देखिए हमारे पांडव भवन में, आज से, आज की बात नहीं है, यज्ञ की शुरुआत से बाबा क्या सिस्टम बना है। देखिए 7:30-8 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता है, 12-1 बजे तक लंच सभी का हो जाता है, शाम को 4 बजे हल्का सा कुछ ना कुछ नाश्ता मिलता है, रात को 7:30 के बाद 8-9 बजे तक सबका डिनर हो जाता है। ये यज्ञ में शुरुआत से बाबा ने ये नियम रखा है कि बाबा को पता नहीं कि 2 बार खाने से चलेगा। बाबा ने शुरू में कभी नहीं कहा कि नहीं तुम 12 बजे तक कुछ नहीं खाओ, 2 बार ही खाना है। बाबा ने कहा कभी? ये नियम क्यों बनाया? कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए कम कम खाएं, 4 बार खाएं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो लंबे समय के बाद खाते हैं, इतनी भूख लगती है, ज़्यादा खा लेते हैं, फिर मोटे भी हो जाते हैं, फिर उनका शुगर भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है, अनेक बीमारियाँ होती हैं। तो बाबा ने इसलिए शुरू में 4 बार जो नियम यज्ञ का बनाया था, आज तक प्रचलित है। मेरे भाई और बहनों, किसी को फॉलो नहीं करना, किसी ब्रदर सिस्टर को किसी का कहना सुनना जरूरत नहीं है। भगवान ने ये नियम बनाया है तो कम कम खाएं, 4 बार खाएं। हमारा नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हो, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, फट से आपको कोई बीमारी ना आए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाश्ता अच्छी तरह से, ब्रेन फूड कहा जाता है नाश्ता को, जो नाश्ता ठीक से करते हैं उनकी मेमोरी शार्प होती है, ब्रेन ठीक से काम करता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं बच्चों को अच्छा नाश्ता खिलाओ ताकि पढ़ाई में, स्टडी में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो नाश्ता को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। जो नाश्ता नहीं करते हैं उनको फट से ही कोई ना कोई जर्म्स वायरसेस पकड़ेंगे, इसलिए नाश्ता ठीक से करना चाहिए और कम कम खाएं, 4 बार खाएं, तो कभी भी मोटे भी नहीं होंगे, शुगर भी, बॉडी अगर आपको डायबिटीज से भी तो अप डाउन नहीं होगा। तो हमारा भोजन में बदलाव लाना है तो ही हमारी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसमें मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा जो हमारे भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है, हमारे आयुर्वेद भी मानता है, जो आज वर्तमान युग में हम सभी हमारे खान पान को बिल्कुल बिगाड़ देने के कारण बॉडी इम्यूनिटी सबकी कम हो गई है, जिसके कारण अनेक वायरसेस बॉडी में जाके फिर घुस जाते हैं, फिर शिकार हो जाते हैं हम। तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ बातें आप ध्यान दीजिए। सवेरे सवेरे मैं कहूँगा कि सवेरे सवेरे आप गरम गरम पानी, जिसमें एक नींबू, एक ग्लास में आधा नींबू निचोड़ दीजिए, दो ग्लास पी सकते हैं तो एक नींबू बहुत अच्छा है, उसमें हल्दी, नींबू हमारे फुल ऑफ विटामिन सी है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, तो एक नींबू तो डेली खाना ही चाहिए। अगर फ्रेश नींबू है तो मैं कहूँगा उसको चार टुकड़ा काट दीजिए। आप अगर पानी आपको अच्छा नहीं लगता है, नींबू को ऐसे चबा के खा सकते हो, पूरा होल नींबू, निचोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भी नींबू अचार जो बनाते हो बाद में उसको सड़ा के गला के रखा जाता है, पूरा खाते हो ना, नहीं, नींबू का वास्तव में छिलका के साथ भी चबा के खा सकते हो, खा के देखो, आपको कुछ भी ये नहीं लगेगा, बहुत कड़वा नहीं लगेगा। आप सवेरे सवेरे नाश्ते में अगर स्प्राउट करते हैं, मूंग, मेथी, चना आदि, ये बहुत अच्छा है, इसमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, बॉडी इम्यूनिटी उसमें भी बढ़ेगी। तो स्प्राउट के साथ साथ आप एक नींबू चार हिस्सा में काट दो, उसको चबा के साथ साथ स्प्राउट के साथ खा लो, बहुत अच्छा। तो सवेरे सवेरे गर्म पानी में अगर आप आधे नींबू निचोड़ते हैं और हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए एक ग्लास में, थोड़ी सी हनी अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आधी चम्मच, एक चम्मच उसका फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हो, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये हल्दी, नींबू, काली मिर्च, ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मैं हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में देखा हूँ कईयों को रिपीटेडली इन्फेक्शन, बार बार शरीर में फोड़े, इधर फोड़े, उधर फोड़े, उधर फोड़े, बार बार, एक महीना दो महीना ठीक हो जाएंगे फिर फोड़े लेके आएंगे। उन्होंने जब सवेरे सवेरे डेली नींबू और काली मिर्च लेना शुरू किया, वो फोड़ा ही ठीक हो गया उनका, बिल्कुल बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो ये हमारे आयुर्वेद में प्राचीन काल में ये सब कहा गया है, हमारे आयुर्वेद आचार्य बोल के गए हैं हमको, लेकिन हम धीरे धीरे जो वर्तमान युग में जो खान पान का सिस्टम है, हम ये सब भूल गए। तो मैं इसलिए मैं कह रहा था, सवेरे सवेरे अगर गरम गरम पानी में आधी नींबू निचोड़ दो, उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद भी डाल दीजिए, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, देखिए सवेरे सवेरे दो ग्लास पी लीजिए। अदरक बहुत अच्छा है, अदरक एक टुकड़ा, आधी इंच का टुकड़ा डेली चबा के खाइए, तो उसमें भी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। डेली हमें ये डेली एक नियम बना देना चाहिए, सवेरे सवेरे नाश्ते में स्प्राउट लें, और जो भी नाश्ता बनता है घर में भले खाएं, कोई बात नहीं। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जूस मत पीजिएगा, जूस पीने से उसकी रेसाएँ सारे निकल जाती है। आप फ्रूट्स खाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल फ्रूट खाइए, उसमें रेसा भी साथ साथ है, आपके दांत मसूड़े का एक्सरसाइज भी हो जाएगा चबा के खाएंगे। आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है, जूसर में फटाफट एकदम निकाल देते हैं, जूस पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में फट से एकदम आपका शुगर शूट कर जाता है। जिनको डायबिटीज है, बॉर्डरलाइन, आजकल तो कॉमन कोल्ड जैसा घर घर में हो गया है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, 50% लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ हो गया है, क्योंकि टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, शुरू में कुछ भी नहीं होगा, जैसे कोरोना वायरस में शुरू में आपको कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रूट जूस पीने के बजाय मैं तो कहूँगा कि हम फ्रूट खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना खाएं अच्छा है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसमें विटामिन न्यूट्रिशंस सब कुछ मिलेगा। और बाजार का बिल्कुल नहीं खाएं, वो तो हम बाबा के बच्चे पालन करते हैं, क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं, कोई गारंटी नहीं, सब आर्टिफिशियल कलर्स, स्वीटनर्स, क्या क्या प्रजर्वेटिव, सब केमिकल्स, सब कुछ है, क्यों खाएं ऐसी चीज़ें। तो हम दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, समय आ रहा है देखना, और कुछ भी मिलेगा नहीं, दुनिया की हालत ऐसी होगी। तो हम कम कम खाएं, चार पांच बार खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, और हम हमारे सवेरे सवेरे अगर नींबू अगर सूट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप आंवला सूट करता है तो आंवला भी लीजिए, आंवला भी अच्छा है। जो चीज़ें सूट नहीं करती है भले नहीं खाइए, लेकिन अदरक, हल्दी, नींबू, ये हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, काली मिर्च बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, गरम गरम पानी पी लीजिएगा। और बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं कि देवता माना संपूर्ण मर्यादित, और बाबा हमें स्वच्छता पवित्रता के लिए कितने शिक्षा देते हैं, तो आज आप सभी सुन रहे हो ये सब महामारी से कैसे बचना है, तो हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धुलाई कीजिए, क्योंकि साबुन से जो ऑयली चीज़ें हैं हमारे हाथ में कहीं अगर है तो वो सारा साफ़ हो जाते हैं, और वायरसेस में भी हमारे हाथ से पूरा मर जाएंगे, वो कहीं रहेंगे नहीं। कॉस्टली ये सब एंटीसेप्टिक्स ये सब चीज़ें जो मिलता है ज़रूरत नहीं है, खाली साबुन से ही हाथ धोएंगे तो ठीक रहेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, आज जो सरकार की तरफ से बार बार अनाउंस किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम एक दूसरे से 1 मीटर दूरी रखें, बाबा ने तो पहले से ही हमको सिखाया है, क्योंकि ये खान पान के बारे में हमको पहले से ही नॉलेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता के बारे में बाबा ने कहा, ये शरीर तो एक सांप है, ये इसको टच करना अर्थात सांप आपको काटेगा। तो पवित्रता के लिए बाबा शुरू से ही हमको ये शिक्षा दिए हैं, तो हमें दूर रहना, ये तो आज समय सिखा रहा है लोगों को, हमें सबसे दूरी मेंटेन करके रहना, किसी को टच भी नहीं करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बिल्कुल सा आसान है, लोगों के लिए आसान नहीं हो सकता है, लेकिन हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, सभी को हमको बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, सब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। आज ये साबुन से बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो हर कोई कर रहा है, हर देश में कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश में उनका रिपोर्ट बता रहे हैं कि उन्होंने सभी ने मास्क का प्रयोग किया, फेस मास्क का प्रयोग किया, जिससे ये महामारी काफ़ी कम हो गई, काफ़ी कम हो गई, बहुत सारे देश का ये रिपोर्ट है। बाकी हर देश में साबुन में हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब करना सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन मास्क आज उस देश में सभी यूज कर रहे हैं जिसके कारण इस महामारी से सभी बचे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मास्क ये जो है ये 2 प्रकार का है। देखिए एक ये मास्क है जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब हम सर्जरी करने जाते हैं तो हम एनेस्थेटिस्ट और सर्जन सभी इसको पहनते हैं, नर्सेस सभी इसको पहनते हैं, ये सबसे बेटर क्वालिटी का है, ये कॉस्टली है और आजकल हर जगह पे इसका उपलब्धि इतनी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। मैं आपको कहूँगा इसके बदले ये होममेड है, आप घर में ये मास्क आप बना सकते हो, आजकल घर घर में सबके पास सुइंग मशीन है, तो कपड़े में ये बना सकते हैं, इस मास्क को पहनना है घर में जब तक रहें कोई बात नहीं मास्क नहीं पहने, लेकिन घर से बाहर निकले तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो क्या होता है, इससे हम अगर छींकेंगे खांसेंगे कुछ होगा तो कंटामिनेशन दूसरों को नहीं होगा, दूसरे अगर कुछ करते हैं तो हमारे पास वो कंटामिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ये हमारे जो जब हम छींकते हैं जोर से बातें करते हैं खांसी करते हैं वो ड्रॉपलेट से ही ये वायरसेस फैल रही है। तो मैं तो कहूँगा सभी भाई बहनें ऐसे घर में होममेड मास्क बनाइए, सभी रखिए, और सभी घर से निकलो तो इसको कंपलसरी पहनना है, कंपलसरी, इसमें अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण, हम खुद को भी बचाएंगे दूसरों को भी बचाएंगे, ये बहुत देश के रिपोर्ट्स हैं, अभी कहते हैं खाली मास्क पहनने से भी ये बीमारी से बहुत कम हो गई, बहुत सारे बच गए। तो हम होममेड ऐसा बनाएं और नाक से ऐसे ढक करके पीछे से बांधें यहाँ से, और यहाँ से बांध के ऐसे जहाँ भी जाएं बांध के बाहर घर से बाहर निकले तो ये मास्क बंधा रहे, इतना भी करेंगे तो हम बहुत खुद को हम बचा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, और सरकार के नियम भी पालन होगा, देश के लिए भी ये बहुत बड़ी सेवा है, ये आप सभी भाई बहनें जरूर करेंगे, मेरा विश्वास है, आप ये होममेड मास्क बना के सबको दीजिएगा, ये भी बहुत बड़ी एक सेवा है। तो शरीर का खान पान के साथ साथ ये सेफ्टी मेजर्स जो बताया ये ध्यान देना है, लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है सुनिए सभी, हमें रोज़ एक्सरसाइज करना है, क्योंकि जब एक्सरसाइज हम करते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद करते थे, कराते थे हमारे दादियों को, आप हिस्ट्री हॉल में सबका चित्र देख सकते हो, वहाँ मम्मा भी बैडमिंटन का रैकेट टेनिस का रैकेट पकड़ करके बाबा के साथ खड़ी है, दादियों को भी खेल कूद कराते थे। तो जब हम एक्सरसाइज नियमित से करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन इतना फास्ट होता है कि हमारे बॉडी एकदम फिट फिट रहता है। तो सवेरे सवेरे अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम एक गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं, खाली गाड़ी चलाते रहते, कभी उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कभी उसको साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, कभी उसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, क्या होगा, एक दिन एक्सीडेंट। ठीक इसी तरह शरीर तो बहुत एक मूल्यवान गाड़ी है, बहुत मूल्यवान गाड़ी है। आपके पास कितने भी कॉस्टली गाड़ी हो उसका कीमत तो निकाल सकते हो, लेकिन शरीर का कीमत बता सकते हो आप? कोई भी नहीं बता सकता है, ये अमूल्य गाड़ी है। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज अपने लिए आधा घंटा एक घंटा जरूर निकालिए, नहीं तो ये शरीर तंग करेगा। ये शरीर के कारण ना पुरुषार्थ होगा, ना आप सेवा कर पाएंगे, ना योग लगेगा, ना कुछ, खाली शरीर के लिए हाय हाय करते रहेंगे। तो शरीर संगम युग में जिसका शरीर निरोगी है वो बहुत भाग्यवान है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। हम अपनी गलती करते हैं, बीमारी होती है, फिर कहते हैं कर्म भोग है, शरीर को मेंटेन करना नहीं आता है, फिर कहेंगे कर्म भोग। तो इसको अच्छी तरह से ठीक से खिलाएं, रोज़ आधा घंटा एक घंटा टाइम निकालें, एक्सरसाइज रोज़ करें। क्या एक्सरसाइज करें? सिंपल एक्सरसाइज, सबसे सारे जॉइंट्स को एक बार मोबिलाइज कर देना, सारे एक एक जॉइंट को, आपका शोल्डर जॉइंट, आपका रिस्ट जॉइंट, आपका कूनी, बॉडी का एक एक जॉइंट को एक बार पूरा आपको मोबिलाइज करना है, नहीं तो स्टिफ हो जाता है। थोड़े साल के बाद देखना आप बैठ नहीं पाएंगे, कमर दर्द होगा, घुटना मुड़ता नहीं है, हाथ ऊपर उठता नहीं, फिर हाय हाय करते रहेंगे। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग, जो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, सबसे सहज एक्सरसाइज है। और जिसको बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जो नहीं चल पाते हैं, घुटने में दर्द है, उनकी बात अलग है। इसलिए आजकल बाहर फिर जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन में, तो सिंपल एक्सरसाइज मैं तो बहुत समय से पहले, आज से 10 साल पहले, 12 साल से बाबा ने, मैं अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठ के मैं सोच रहा था, हॉस्पिटल में इतने डायबिटीज़ पेशेंट आ रहे हैं, बाबा इनको क्या एक्सरसाइज सिखाऊं, कैसे ठीक होंगे? तो मुझे जो टचिंग हुई, मैं जो एक्सरसाइज आपको बना के दिया हूँ, वॉकिंग योगा एंड होलिस्टिक एक्सरसाइज, आप यूट्यूब में से डाउनलोड कर सकते हो। वॉकिंग योगा घर में 2-4 फुट एरिया में ही, इतने एरिया में ही कैसे वॉकिंग करना है, बाबा के लिए इसलिए एक रूहानी यात्रा का गीत भी बनाया हूँ खास, जिसमें बाबा के 300 नाम है शिव बाबा के। तो नामों को स्मरण करते हुए जो योगीश्वर है, पाप कटेश्वर है, सर्व पाप हर हर है, उसको याद करके चलना ही तो वॉकिंग योगा है। लोग खाली आसन करते रहते हैं, उसको योगा योगा समझते रहते हैं, वो योगा थोड़ी है। महर्षि पतंजलि हमको योगासन सिखा के गए थे, योगा इज़ फॉर मेंटल हेल्थ, आसन इज़ फॉर फिजिकल हेल्थ। लेकिन धीरे धीरे वो योग तो, राजयोग तो भूल ही गए लोग, खाली आसन करते रहते हैं, उसको योगा योगा करते रहते हैं, वो योगा है ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि परमात्मा पिता को याद करना, शिव बाबा को याद करना, साथ साथ शरीर में शरीर को चलाना। तो शरीर में सबसे अच्छा है शरीर को चलाना, तो घर में थोड़े एरिया में आप जब चल रहे हो तो वॉकिंग भी हो रहा है। हम जब बाहर चलने जाते हैं खाली आगे ही चलते रहते हैं, आगे ही चलते रहते हैं, हाथ का एक्सरसाइज तो कुछ होता ही नहीं, घुटना मोड़ता भी नहीं है। तो ये वॉकिंग योगा में आपको कंप्लीट, कभी आगे चलना, कभी पीछे चलना, कभी साइड चलना, हाथ को ऊपर उठाना, हाथ को आगे, तो पूरा कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। जो आधा घंटा नियमित इसको करते हैं, बहुत माताओं ने अपना शरीर का 10-10 किलो, 15-15 किलो वेट कम कर दिया, इससे एकदम फिट हो गए, सारी दवाइयाँ कम हो गई, बंद हो गई। तो मैं कहूँगा रोज़ मेरे भाई और बहनों, आप वॉकिंग योगा सवेरे ज़रूर करो, और शाम को होलिस्टिक एक्सरसाइज आधा घंटा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, उसमें सारी बॉडी का जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाता है। जो बुजुर्ग हैं नहीं कर पाते हैं वॉकिंग योगा, आप बैठे बैठे भी, खड़े होके भी होलिस्टिक एक्सरसाइज करो, इतना एक्सरसाइज करो, देखना आप फिट रहेंगे, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा विश्वास है आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको कोई बीमारी सताएगी नहीं। तीसरी बात, हमें रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को दुनिया वाले 8 घंटा सुलाते हैं, आपके लिए आधी नींद की आवश्यकता है। 4-5 घंटा अगर गुड रेस्ट लेते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको फट से इन्फेक्शन नहीं होगा। साइंटिस्ट प्रूव करके दिखे हैं, जो कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है, एक्सेसिव स्लीप और इनएडिक्वेट स्लीप, बोथ आर डेंजरस, उनको हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि बीमारियाँ हो रही है। तो ये तो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में कब से हैं, आज साइंटिस्ट उसको प्रूफ करके बता रहे हैं। अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तो बैलेंस लाइफ, योगी माना बैलेंस लाइफ जी के देख। तो जो बैलेंस लाइफ जीता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। तो मेरे भाई और बहनों, देह का अधीनता को तो त्याग करना ही है, लेकिन देह को अंत तक संभालना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नहीं तो योग लगेगा नहीं, पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे, हाय हाय करके शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम तो वाह वाह करके, वाह बाबा वाह रे मैं, वाह ड्रामा करके शरीर त्यागना है, जैसे बाबा ने त्याग दिया ऐसे मिनट में सेकंड में शरीर छोड़ के जाना है। इसलिए मेरा सबके लिए यही शुभ संदेश है कि आप जो अभी परिस्थिति में चारों तरफ बीमारियां, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के और क्या क्या होगा देखिए। तो शरीर को अंत तक संभालना भी है। तो ये थोड़ा सा टिप्स जो मैं बताया कि खान पान में सुधार लाइए, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना, नींबू जरूर एक खाइएगा, अगर नींबू नहीं सूट करता है तो आंवला ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर वो भी नहीं सूट करता है तो कोई बात नहीं, हल्दी एक चम्मच तो डेली पानी में मिला के पीजिएगा, और जिंजर एक टुकड़ा, कम से कम एक आधी इंच जिंजर चबा के खाइए, बहुत अच्छा देखना। काली मिर्च भी आप ऐड कीजिए, कहीं ना कहीं आप देखना बॉडी की इम्यूनिटी होगी। और जूस नहीं पियो तो बहुत अच्छा है, जूस के बदले होल फ्रूट्स खाइए, और साथ में एक्सरसाइज तो करना ही है, आधा घंटा एक घंटा जरूर करना है, ये शरीर के लिए आधा घंटा देंगे, देखना आप 4 घंटा आराम से बैठ के योग करेंगे, आपको शरीर का कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर शरीर का ध्यान नहीं दिया, घुटना दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द शुरू हो गया, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे, योग लगेगा ही नहीं। और साथ साथ गुड रेस्ट भी करना है, 4-5 घंटा अच्छी तरह से साउंड स्लीप हो जाए, रेस्ट कीजिए, फिर जब जागो तब सवेरा एकदम। जगदीश भाई कहते थे हम कोई गुफा में बैठ के तपस्या करने वाले सन्यासी नहीं हैं, हमें तो सबके साथ मिलना भी जुलना भी है। तब जब एकदम जागृत रहते हैं, एकदम चेहरा पूरा झलक फलक रूहानी दिखाई दे, तो हम अलर्ट होके रहें, इसलिए साउंड स्लीप भी चाहिए। अगर नींद नहीं करते हैं तो बैठे बैठे सुस्ती करते रहते हैं, उबासी खाते रहते हैं, वो भी डिसर्विस है। योग में बैठे बैठे अगर सुस्ती करते हैं वो तो बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है, विकर्म विनाश होने के बजाय अगर कोई योग में बैठ के झुटका खाता रहता है, वायुमंडल को खराब करता है, तो बाबा कहते हैं ये बोझ चढ़ता है। तो इसलिए हम साउंड स्लीप भी करें, अच्छी तरह से बॉडी इम्यूनिटी तब बढ़ेगी। ओके, हम आगे चर्चा करेंगे हमारे मन बुद्धि संस्कार, जो मुख्य कर्मेंद्रियाँ है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ है, जो महामंत्री है, इसको कैसे बस में रखें, कर्मेंद्रिय जीत बने, स्वराज्य अधिकारी बने, तो ही हम बाबा के साथ सहज उड़ सकेंगे। फिर हम चर्चा करते हैं। ओम शांति।